नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज केवली भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो सात तत्व नौ पदार्थ पंच अस्थि काय इन सब का जो वर्णन है यह वर्णन संसारी भव्य जीवों को जानने पढ़ने और चिंतन करने के लायक है। इनका चिंतन मनन जब करने के लिए भव्यात्मा प्रयास करने लगता है तो उसमें यदि वह सही सही विवेक बुद्धि से चिंतन करते करते आगे बढ़ता है तो इन तत्वों में कभी उसको शंकाएं उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर वहीं रहता है, विवेक से उसको निकालना पड़ता है। शंकाओं का निरसन बाजू में ही रहता है, परंतु अपने श्रुत ज्ञानोपयोग के लिए विवेक यदि रहता है वो सभी अपेक्षाओं से विचार करते हुए आगे पीछे आजू बाजू में जो कुछ भी अपेक्षाएं होती हैं उन अपेक्षाओं को लगा लगा करके जब देखता है तो उसके लिए मन में उत्पन्न होने वाले शंकाओं का निरसन स्वतः अपने आप को हो जाता है। बहुत बड़ी विशेषता है जैन दर्शन की। जैन दर्शन एक ऐसा फिल्टर दर्शन है, ऐसा एक विशिष्ट दर्शन है जहां पर तत्व ज्ञान तत्व सिद्धांत बहुत गहराई को लेकर के होता है। जो तत्व जो सिद्धांत जितना गहरा होता है उतना ही वह अच्छा भी होता है और उतना ही वह गंभीर भी होता है, उतना ही वह सारे दुनिया के प्रश्नों को निरसन करने की क्षमता वाला भी होता है, और इस तरह से जैन दर्शन की महिमा, जैन धर्म की महिमा, जैन सिद्धांतों की महिमा, उनका कहना ही क्या, प्रत्येक संसारी प्राणियों का वह कल्याण करने की क्षमता रखता है। संसारी प्राणी किसी भी दर्शन को स्वीकार करने से पहले उसमें वह प्रश्न करता है कि इस दर्शन की क्या विशेषता, मैं इसको स्वीकार क्यों करूं। जब ऐसा प्रश्न करता है तो जैन दर्शन कहता है ऐसा ही तो प्रश्न करने वाला मुझे चाहिए। अगर प्रश्न करने वाला मुझे नहीं मिलेगा तो मेरे को वह पचा नहीं सकेगा, मेरे को वह समझ नहीं सकेगा, मेरे को वह धारण करके खुद का कल्याण नहीं कर पाएगा। ऐसा जैन दर्शन कहता है। जैन दर्शन यह कहता है कि तुम केवल मात्र एक अंश मात्र में भी अनुरागी हो गए मेरे प्रति, तो उस अनुराग वश मेरे ओर चले आओगे। कौन सा दर्शन कहता है? जैन दर्शन। मेरे ओर चले आओगे और मेरे क्षेत्र की परिधि में, मेरे आसपास तुम आकर के बैठने लग जाओगे, और जब आकर के बैठोगे तो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर यह भी जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि मैं अपना यहां एक छोटा सा कुटिया बना लूं, तो वह एक छोटा सा कुटिया निर्माण करता है। जैन सिद्धांत के परिसर में, जैन सिद्धांत के उस भूमि के तल पर एक कोने में छोटी सी एक कुटिया निर्माण कर लेता है, और फिर उसके लिए जैन दर्शन कहता है तुमने बहुत अच्छा किया है, हमारे भूमि पर तुमने कुटिया निर्माण कर ली, तुम्हारा नसीब है, भाग्य का द्वार खुलने का समय आया है। परंतु यह सोचता है मैंने तो कुटिया इसलिए निर्माण की कि इसके भीतर मुझे प्रवेश मिले, इसके भीतर मुझे रहने का अनुमति मिले, लेकिन जैन दर्शन का सरकार एक ऐसा उदार सरकार है जो इस सरकार की जमीन पर किसी भी कोने में कोई एक अपना कुटिया बना लेता है तो कहता है अभी तो कुटिया बना लो, जगह फ्री में हो जाएगी बाद में, लेकिन वोट मुझे डालना। वोट मुझे डालना, लेकिन इस वोट की मुझे जरूरत नहीं, ये वोट भी तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे हित के लिए। यदि तुम मुझे स्वीकार करोगे तो मेरे हित के लिए तुम स्वीकार नहीं करते हो, तुम मेरे को स्वीकार करोगे तो मेरा हित नहीं होगा, परंतु मुझे तुम स्वीकार करोगे तो तुम्हारा हित अवश्य होगा। इसलिए तुमने जो कुटिया बनाई है वो बिल्कुल ठीक बनाई। और फिर सोचना, चिंतन करना, कुछ ही समय में इस कुटिया को हटा करके तुम पत्रे का शेड भी बना लो, चलेगा। और पत्रे का शेड हटा करके धीरे धीरे ईंट का बिल्डिंग भी बना लो, और उस बिल्डिंग को भी एक एक मंजिल ऊपर चढ़ाते जाओ, तो हम मना नहीं करेंगे, अतिक्रमण को कभी नहीं हटाएंगे। तुम पहले मेरे परिधि में आ जाओ, फिर आकर के इस सरकार के सुख को एक बार देखो तो सही। जैन दर्शन एक बहुत बड़ा सरकार, जैन दर्शन इतनी बड़ी सरकार है कि उस सरकार की शरण में जाते ही जीवात्मा का कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है। तो क्या इस संसारी प्राणी ने इस सरकार की शरण में, इस सरकार की भूमि पर अपनी कुटिया अनादिकाल से एक बार भी बनाई? नहीं बनाई, एक बार भी नहीं बनाई। दूसरी जगह अवश्य बना ली। दूसरी जगह कहां? जिस सरकार के धरती पर सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती, बल्कि उल्टा दुख ही मिलता है, ऐसी सरकार को वोट दे करके, अपनी गुटिया बना करके, वहां पर कई भव व्यतीत किए हैं, कई भव व्यर्थ गमाए हैं, लेकिन इस दर्शन की सरकार में, सरकार के क्षेत्र में एक बार भी हमने कुटिया नहीं बनाई। यही कारण है कि संसारी प्राणी के भीतर जो यह उपयोग की धारा, श्रुत ज्ञानोपयोग की धारा जो प्रवाहित अनादिकाल से है, इस प्रवाह के लिए दिशा नहीं मिली, बहने के लिए योग्य मार्ग नहीं मिला, आगे बढ़ने के लिए कोई विधि विधान न होने के फलस्वरूप उसको सही सही पथ नहीं मिला, इसलिए यह भटकता रहा है। यह श्रुत ज्ञानोपयोग अनादिकाल से हमारा भटकता रहा है। भटकने वाले इसी श्रुत ज्ञानोपयोग को रास्ते पर लगाने के लिए इस श्रुत ज्ञानोपयोग को यह समझाना पड़ेगा कि हे उपयोग, तुम एक बार जैन सिद्धांत के भूमि पर एक अपना कुटिया बना लो, कल्याण होगा, उद्धार होगा। वह अनेकांतमय सिद्धांत है, वह अनेकांत का सार है, अनेकांत का वह निचोड़ है। जिस धरती पर आप एक बार पग रखोगे तो कल्याण प्रारंभ होगा, कल्याण का मंगलाचरण होगा। तो अपने ज्ञानोपयोग को अनेकांतमय सिद्धांत के अंदर जब हम प्रवाहित करते हैं तो वह उपयोग सुखी होने लगता है, श्रुत ज्ञानोपयोग सुख की अनुभूति करने लगता है, उसके कई आकुल व्याकुलताएं छूट जाती हैं, महीनों से, वर्षों से, भवों से जो प्रश्न खड़े थे उन प्रश्नों का निरसन मिलने लगता है। ऐसा है यह जैन दर्शन, अनेकांतमय जैन दर्शन। इस दर्शन के भीतर केवली भगवंत ने योग और उपयोग की चर्चा की है। उपयोग प्रथम है, योग बाद में है। उपयोग ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अपने पास दो ज्ञान है, मति ज्ञानोपयोग और श्रुत ज्ञानोपयोग। इन दोनों उपयोगों के माध्यम से हम अपने योग को प्रभावित करते रहते हैं। योग क्या होता है? मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति, इसको योग कहते हैं। उपयोग किसको कहते हैं? चैतन्य, ज्ञानोपयोगी परिणाम उपयोग। चैतन्य ज्ञान का जो निरंतर जानने रूप जो परिणमन है, प्रति समय वह अपने जानने की शक्ति के द्वारा प्रति समय जान रहा है। एक समय में जो जाना वो दूसरे समय में नहीं जाना, दूसरे समय में जो नहीं जाना वो जाना, वो तीसरे समय में नहीं जाना। इस प्रकार निरंतर जानने रूप जो यह प्रवाह चल रहा है, इसको चैतन्य ज्ञान की परिणति कहते हैं। इसी परिणति का नाम उपयोग है। इस उपयोग का उपयोग हम सही दिशा में करेंगे तो योग भी समझ जाएगा। मन, वचन, काय, यह योग भी समझ जाएगा। योग को संभालने के लिए उपयोग को संभालना है। उपयोग को संभालेंगे नहीं तो योग को कितना भी संभालो उससे कुछ भी कार्य की सिद्धि नहीं होनी है। क्योंकि उपयोग डोरी है और योग पतंग है। पतंग को नीचे लाना चाहते हैं या पतंग को बहुत दूर गगन में और भेजना चाहते हैं तो इसका माध्यम क्या होगा? धागा। ये डोरी माध्यम है। इस डोरी से जैसे हिला लो वैसा पतंग हिलेगा। इस डोरी को खींचो तो पतंग भी खिंच जाएगा, इस डोरी को छोड़ो तो पतंग भी दूर जाएगा, और इस डोरी को हिचके दे दो तो पतंग को भी हिचके पड़ेंगे। पतंग केवल डोरी पर निर्धारित है कि वह किधर जाए। ऐसा ही ये योग का पतंग, इसको किधर ले जाना, किस दिशा में ले जाना, ये योग पर, उपयोग पर डिपेंड है, उपयोग की डोरी पर डिपेंड है। यह उपयोग की डोरी अनादि से है, परंतु इस डोरी की यह विशेषता है कि इस डोरी को यदि अशुभोपयोग में रखते हैं तो इसमें अलग ताकत रहती है, शुभोपयोग में रखते हैं तो इसकी ताकत अलग मानी जाती है, शुद्धोपयोग में रखते हैं तो उसकी ताकत अलग मानी जाती है। यह इस डोरी की विशेषता है कि यह डोरी पतंग से जुड़ा हुआ है, पर यह अशुभोपयोग की डोरी हो तो पतंग शुभोपयोग की अनुभूति करेगा या अशुभोपयोग की? ये पतंग की डोरी यदि अशुभोपयोग की है तो योग किस टाइप का रहेगा? अशुभोपयोग रूप रहे, अशुभ अशुभ योग रहेगा कि शुभ योग रहेगा? ठीक है, सर्वथा एकांत नहीं है, इसमें हम समझेंगे। यह अशुभोपयोग की डोरी अशुभोपयोग रूप है तो किस वजह से है? इस पर क्या रंग चढ़ा हुआ है, किस कर्म का रंग चढ़ा हुआ है, यह भी विचार करना है। जिस उपयोग के डोरी पर मिथ्यात्व का रंग चढ़ा हुआ हो, अनंतानुबंधी कषाय का रंग चढ़ा हुआ हो या सम्यक मिथ्यात्व का रंग चढ़ा हुआ हो, इसमें से कोई भी रंग चढ़ा हुआ हो तो वह डोरी अशुभ उपयोग की डोरी मानी जाएगी और यह डोरी योग के पतंग से जुड़ी हुई है। वह पतंग इस डोरी के सहारे से नीचे धरती पर भी गिर सकता है और आकाश में भी उड़ सकता है। वह गुलाटे भी खा सकता है और सीधा ऊपर भी उठ सकता है। उस पतंग के लिए दो ही स्थान है, या तो आकाश में उड़ो या तो नीचे धरती पर गिरे रहो। योग के भी दो ही स्थान होते हैं, या तो योग ऊपर उठे या तो नीचे रहे। नीचे रहेगा योग तो अशुभ योग कहलाएगा, ऊपर उड़ेगा तो योग को शुभ कहेंगे। डोरी डोरी है, योग को शुभ और अशुभ हम बना सकते हैं। अशुभोपयोग के साथ रहने वाला वह योग भी शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी। योग को शुभ बनाना और अशुभ बनाना आसान है। योग कभी शुद्ध नहीं होता। योग के दो ही भेद हैं, शुभ योग और अशुभ योग। शुभ योग से पुण्याश्रव होता है और अशुभ योग से पापाश्रव। सही है ना? शुभ योग से पुण्याश्रव होगा और अशुभ योग से पापाश्रव। परंतु उपयोग अशुभ होने के लिए और शुभ होने के लिए कौन सा रंग चढ़ना चाहिए, डोरी के ऊपर कौन सा रंग चढ़ना चाहिए, अशुभ होने के लिए क्या रंग चढ़ाएं, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व, इन तीन कर्मों के कारण से तीन गुणस्थान बनते हैं। मिथ्यात्व के उदय में कौन सा गुणस्थान, पहला गुणस्थान। अनंतानुबंधी के उदय से कितने गुणस्थान, दो गुणस्थान, प्रथम और द्वितीय। और सम्यक मिथ्यात्व के उदय से तीसरा गुणस्थान बनता है, एक ही गुणस्थान बनता है। सम्यक मिथ्यात्व के उदय के कारण जीव अशुभोपयोगी होता है, अनंतानुबंधी के उदय वाला अशुभोपयोगी होता है और मिथ्यात्व का उदय वाला भी अशुभोपयोगी होता है। बहुत अच्छी चीज है, मनोयोग से समझना है, मनोयोग से बैठना है, योग को संभालना है, योग को एकाग्र करना है, तो उपयोग में जो खराबी है वो खराबी दूर हो सकती है। क्योंकि जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, मन को एकाग्र ग्रहण करके ग्रहण करते हैं, पहले योग को संभालना पड़ता है। परंतु यह योग को संभालना पहले जरूर होता है, पतंग को पहले संभाला जाता है, फिर उससे डोरी को बांधा जाता है। डोरी पहले नहीं लाते, पतंग पहले ढूंढते। पतंग अगर मिल गया तो फिर डोरी भी आवश्यक है। तो मन के पतंग को जो संभाल करके एकाग्र करता है, उसके लिए भीतर जो डोरी पड़ी हुई है अनादिकाल से, उस डोरी को वह कनेक्ट कर सकता है। तो मन को संभाल करके एकाग्र करके हम जब बैठ जाते हैं तो उपयोग को भी संभालने का अवसर प्राप्त होता है। तो पतंग को संभालना है, पतंग मन है, पतंग वचन है, पतंग काया है, तीनों को संभालो, काया को संभालो, वचन को संभालो और मन को संभालो, ये पतंग है। और इस पतंग से भले ही वह डोरी अशुभोपयोग की क्यों ना हो, उसको बांध लो, उसको बांध करके उसको छोड़ दो, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, छोड़ दो उसको। परंतु यदि सच्चे देव शास्त्र गुरु शास्त्र स्वाध्याय जिनवानी के सामने आप अपने पतंग को संभालते हुए अशुभोपयोग की डोरी को बांध रहे हो और उनके सामने उड़ा रहे हो, तो वो ऊपर उड़ेगा, नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है ना? किसके सामने उड़ा रहे हैं उस पतंग को? देव शास्त्र गुरु के सामने उड़ा रहे हैं। तो देव शास्त्र गुरु के सामने ये पतंग खड़ा है, लेकर के आप खड़े हैं, तो इस पतंग को शुभ कहेंगे या अशुभ? जो देव शास्त्र गुरु के सामने आया हुआ है, पंचेंद्रिय विषयों से बच करके मंदिर में आया, उपदेश सुन रहा है, इसको शुभ कहेंगे कि अशुभ? शुभ कहेंगे। परंतु भीतर का जो उपयोग है अनादिकाल से, उस पर रंग चढ़ा हुआ है अनंतानुबंधी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का, यह उपयोग कैसा है? अशुभ है। उपयोग तो अशुभ है, मंदिर में जाने के बाद भी उपयोग अशुभ है, क्योंकि रंग चढ़ा हुआ है। मंदिर में आने मात्र से मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा, अनंतानुबंधी का नाश नहीं होगा, सम्यक मिथ्यात्व का विनाश नहीं होगा, उपयोग तो वही रहेगा। मंदिर में आने के बाद भी उपयोग वही है, और विषय कषायों में भी प्रवृत्ति हम करते हैं तो उस समय में भी यही पतंग हमारे हाथ में रहता है, मन वचन काय का। उस समय में भी वही उपयोग होता है। हम विषयों में प्रवृत्त रहे तो उपयोग अशुभोपयोग है, और मंदिर में जाए तो भी अशुभोपयोग है, लेकिन हमारा योग कैसा है? शुभ है, क्योंकि विषय कषायों से बचे हुए हैं, दूर हुए हैं, मंदिर में आए हैं, इसलिए योग शुभ है। ये योग शुभ है। अब सोचें, इस योग को हम क्या कर रहे हैं? इस योग को हाथ में रखे हैं, इस पतंग को हाथ में रखे हैं, और किस लिए रखे हैं? हमको डोरी को बदलना है, डोरी के रंग को बदलना है, इसलिए पतंग को यहां पर ला करके मंदिर में रखे लेके बैठे हैं। इस योग के माध्यम से क्या कार्य सिद्ध करना है? हम मंदिर में क्यों आ गए? मन से आए, वचन से आए, काय से आए, योग से आए, और यही पतंग है। इस पतंग को मंदिर में क्यों लाए? उपयोग को, उपयोग के रंग को बदलने के लिए। वह उपयोग का रंग कैसे बदलेगा? तो हम मिथ्यात्व को हटाने का विचार करते हैं। हे भगवान, मैं आपके पास इसलिए आया हूं, मुझे मिथ्यात्व का नाश करना है, अनंतानुबंधी कषाय को जीतना है, उसको कम करना है, उसको हटाना है, सम्यक मिथ्यात्व को भी हटाना है। मैं मिथ्यात्व को हटा दूंगा तो अंधश्रद्धा समाप्त हो जाएगी, अनंतानुबंधी कषाय को हटा दूंगा तो सम्यक दर्शन का लाभ होगा, सम्यक मिथ्यात्व को हटा दूंगा तो उसके उदय में जो उभय रूप परिणाम होते हैं, सम्यक परिणाम और मिथ्या परिणाम, मिश्र परिणाम जो होते हैं, वो मिश्र परिणाम भी मेरे अंदर नहीं होंगे। तो मेरे इस ज्ञानोपयोग की, श्रुतक ज्ञानोपयोग की डोरी पर जो मिथ्यात्व का रंग चढ़ा हुआ है, सम्यक मिथ्यात्व का रंग चढ़ता रहता है कभी कभी, और अनंत अनुबंधी का रंग चढ़ता रहता है, इस रंग को मैं उतार करके मैं अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का रंग चढ़ाना चाहता हूं, और और इसको अनंतानुबंधी के रंग को हटाना चाहता हूं, मैं सम्यक प्रकृति का रंग चढ़ाना चाहता हूं और इस मिथ्यात्व के रंग को हटाना चाहता हूं, मैं इस सम्यक मिथ्यात्व के रंग को हटाना चाहता हूं और एक पक्ष में रहने वाला सम्यक प्रकृति, सम्यक्त्व के प्रति जो श्रद्धा आस्था होती है उस सम्यक्त्व के रंग को मैं चढ़ाना चाहता हूं। हे भगवान, मैं इसीलिए अपने पतंग को यहां पर लाया हूं, मैं अपने योग को अपने पतंग को संभाल करके आपके सामने बैठा हूं और आप मेरे लिए कुछ ऐसा सहयोग कर दो, ऐसा अतिशय कर दो, ये मनोयोग, ये वचन योग, ये काय योग, इसकी दृष्टि, इसकी प्रवृत्ति शुभ में हो जाए और अशुभ छूट जाए, ऐसी कुछ कृपा कर दो। हे भगवान, मैं जब तक शुभोपयोगी नहीं बनूंगा तब तक ये रंग उतरेगा नहीं, और जब तक रंग नहीं उतरेगा तब तक मेरा उपयोग शुभोपयोग होगा नहीं, और जब तक मेरा उपयोग शुभोपयोग में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक शुद्ध उपयोग की प्रतीक्षा तो व्यर्थ ही है, मैं अशुभ में रहूंगा, अशुभोपयोग में रहूंगा तो शुद्धोपयोग की प्रतीक्षा व्यर्थ है, यहां पर तो उत्पन्न नहीं होगा। पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में योग नियम से अशुभोपयोग रहता है, पर योग बदलता रहता है, योग शुभ भी होता है अशुभ भी होता है। अशुभ कब होगा योग, अशुभ कब होगा, जब विषय कषायों में प्रवृत्ति करेंगे, इंद्रिय विषयों में जाएंगे, सांसारिक कार्य करेंगे, हिंसा का कार्य करेंगे, आरंभ सारंभवादी के घर घर के कार्यों में उलझेंगे, तब हमारा योग अशुभ होता है। परंतु उपयोग कैसा है वहां, घर में उपयोग भी अशुभ है, क्योंकि वहां पर भी वही रंग है ना। संसार में जाए तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय है तो भी वही उपयोग है, और मंदिर में आने मात्र से क्या उपयोग बदल जाएगा, नहीं, पर योग बदलेगा क्या, नहीं, अवश्य बदलेगा। योग बदल गया तो पतंग उड़ गया, आकाश में उड़ गया, जो आकाश में उड़ता पतंग होता है वह पुण्याश्रव ही करता है, पापाश्रव नहीं करता, और धरती पर पड़ा हुआ जो पतंग होता है विषय कषायों की धरती पर वह पापाश्रव करता है, पुण्याश्रव नहीं करता। कितनी अच्छी तरह से बात समझ में आ रही है, मैं योग और उपयोग के भेद को समझाना चाहता हूं, क्योंकि इसी को न समझने के फलस्वरूप हमारा विकास नहीं हुआ है। हमारा श्रुतक ज्ञानोपयोग वह समल नहीं पाया अपने द्वारा, अपने को अपने में, अपना ही उपयोग समल नहीं पाया, अपना ही योग समल नहीं पाया, इसलिए विकास का मार्ग हमारा कुंठित रहा। तो भगवान कहते हैं अशुभोपयोग का सद्भाव पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में होता है, वो जब तक उन गुणस्थानों से परे नहीं होगा, गुणस्थानों का त्याग नहीं करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, तब तक अशुभोपयोग निरंतर रहता है। जीवन भर भी हम यदि उस गुणस्थान में रहते हैं तो अशुभोपयोग भी जीवन भर रहेगा, पर योग बदलता रहेगा। जब आप मंदिर में जाओगे योग बदलेगा, संसार में रहोगे योग बदलेगा, उपयोग बदल नहीं सकता। उपयोग को बदलने के लिए क्या करें, योग को बदलने के लिए तो हम मंदिर आ गए, बदल गया योग, बदल गया, अशुभ से शुभ हो गया, परंतु उपयोग को बदलने के लिए हम क्या करें, तो पंचलब्धि में प्रवेश करें, पंचलब्धियों की शरण लें, सौक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगी लब्धि, करण लब्धि की शरण में जाएं, और इनकी शरण में जाने के लिए आप कहीं भी रहें, जरूरी नहीं कि मंदिर में ही आए, नरक में भी ये पांच लब्धियां होती हैं, नरक में भी उपयोग को बदलना नरक में भी संभव है, परंतु नरक में क्या योग बदलेगा? नारकी जीव योग को बदल नहीं सकता, नारका नित्या अशुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकी जीवों का सदा शरीर अशुभ है, मन वचन काय की प्रवृत्ति सदा अशुभ है, किंतु नारकी जीव उपयोग को बदल सकता है। अशुभ लेशा के साथ, अशुभ योग के साथ, दूसरे के साथ वह तीव्र कषाय कर रहा है, एक दूसरे पर टूट पड़ रहे हैं, और उस समय में भी झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उस समय में भी यदि उसकी कषाय मंद हो गई, झगड़ते समय मंद हो सकती है कि नहीं? झगड़ते झगड़ते अनंतानुबंधी कषाय को बस बस भैया बहुत हो गया, अब नहीं झगड़ूंगा मैं, झगड़ते समय में भी ये परिणाम आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं। अनंतानुबंधी कषाय अगर मंद हो गई और वो पांचों लब्धियों की शरण में गया, तो करण लब्धि में जाकर के वह सम्यक दर्शन प्राप्त करता है क्या? नहीं करता है, अशुभ लेशा के साथ करता है, परंतु कषाय के रंग को मंद करना पड़ता है, तीव्र कषाय को मंद करना पड़ता है, और मंद करने पर ही उसके सम्यक दर्शन की भूमिका निर्मित होती है, और मंद कषाय के साथ अशुभ लेशा होते हुए भी उसमें भी जो तरतमता बनती है, कृष्ण नील कापोत, कापोत लेशा के साथ वह सम्यक दर्शन की भूमिका का नींव डाल देता है, और वह पांच लब्धियों की शरण में चला जाता है। जब वह पांच लब्धियों के शरण में जाएगा तो उपयोग की डोरी तो बदल गई, डोरी चेंज हो गई, पतंग वही है, मन वचन काय अशुभ है, अशुभ लेशा है तो अशुभ योग है, मन वचन काय की प्रवृत्ति झगड़े में है, झगड़ा कर रहा है मन, झगड़ा कर रहा है वचन, झगड़ा कर रहा है काया, द्वंद्वों में फंसा हुआ है, द्वंद्वों में फंसा हुआ हो करके भी भीतरी जो उपयोग है और उस उपयोग के ऊपर जो अनंतानुबंधी मिथ्यात्व आदि का प्रवाह है, रंग है, उस रंग को चेंज करना संभव है, और जीव चेंज कर लेता है, पतंग वही रहता है लेकिन डोरी चेंज हो जाती, कर सकता, और उसने अप्रत्याख्यानावरणी की डोरी को, यानी अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में, जहां अनंतानुबंधी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं है, ऐसे अप्रत्याख्यानावरणी डोरी को जोड़ देता है नारकी जीव, तो उसका उपयोग का जो रंग है वो बदल जाता है, अप्रत्याख्यानावरणी का रंग आ जाता है और अनंतानुबंधी का रंग उतर जाता है, मिथ्यात्व का रंग उतर जाता है, सम्यक मिथ्यात्व का रंग उतर जाता है। कितनी बड़ी बात हो गई, मन वचन काया की प्रवृत्ति कहां है इसका महत्व नहीं है, कहां पर है मन वचन काय की प्रवृत्ति की ये चेष्टा, कहां पर है, किस जगह है, क्षेत्र कौन सा, इसका महत्व नहीं, परंतु इसका महत्व है कि मैं हम उस मन वचन काय को एकाग्र करने की क्षमता रखते हैं क्या? नहीं। नारकी लड़ता हुआ भी अपने मन वचन काय को उपयोग के तरफ प्रवाहित करता है, योग को उपयोग के तरफ प्रवाहित करता है, और वह चिंतनशील बन जाता है कि ये मिथ्या तो अनादिकालीन मुझे दुख का कारण है, ये अनंतानुबंधी दुख का कारण है, ये सम्यक मिथ्या तो मेरे लिए हानिकारक है, इस प्रकार चिंतन करने के लिए नारकी जीव को भी एकाग्र होना ही पड़ेगा ना, लड़ते हुए एकाग्र होना पड़ेगा। युद्ध में लड़ते हुए ही इतने एकाग्र सैनिक होता है कि बंदूक का नोक जहां जाना चाहिए वहीं नोक वहीं पर सीधा रहता है और गोली जहां जाना चाहिए वहीं जाता है, लड़ते हुए भी एकाग्रता को धारण करता है व्यक्ति। ऐसी एकाग्रता नरक में होती है और इसी एकाग्रता के कारण से अशुभ योग के द्वारा भी, अशुभ लेशा के द्वारा भी उपयोग के रंग को वह बदल देता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और बहुत गहरी बात है। ऐसे सूक्ष्म चिंतन हमें करना चाहिए, तब यह ज्ञानोपयोग समझ जाएगा, श्रुतक ज्ञानोपयोग। योग अलग है, उपयोग अलग है, इतना तो समझ में आ गया। मन वचन काया की प्रवृत्ति को उपयोग कहते हैं, यहां वो योग कहते हैं, मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं, और ज्ञान की गुणस्थानगत प्रवृत्ति को उपयोग कहते हैं। जिस समय जिस गुणस्थान में प्रवृत्त है वह कर्म सापेक्ष उस गुणस्थान में उस कषायों का, उन कर्मों का अवश्य अनुभव करता है उपयोग। पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में है तो उन गुणस्थानों में रहने वाले कषाय का, मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व के उदय का अनुभव कौन कर रहा है, कौन प्रभावित हो रहा है, उपयोग हो रहा है या योग हो रहा है? उपयोग हो रहा है, यानी कर्मों का सीधा प्रभाव उपयोग पर रहता है और उपयोग का सीधा प्रभाव योग पर रहता है। पहला उपयोग, फिर उसके ऊपर कर्म, और कर्मों के आधार से उसका गुणस्थान का निर्णय होगा। ये उपयोग अनादि है और इसके ऊपर क्या आकर के पड़ रहे हैं, कर्म। और उन जिन कर्मों को यह उपयोग ग्रहण कर रहा है, उपयोग ही तो ग्रहण करता है, राग द्वेष कौन करता है? उपयोग। राग द्वेष करने वाला जीव यदि उस उपयोग के माध्यम से मिथ्यात्व को खींच रहा है तो किस गुणस्थान में है? पहले गुणस्थान में। अनंतानुबंधी को खींच रहा है तो कितने गुणस्थानों में है? पहले दूसरे गुणस्थान में। और सम्यक मिथ्यात्व को खींच सकता है क्या? सम्यक मिथ्यात्व आश्रय और बंध के योग्य है क्या? तो जो कर्म आश्रय और बंध के योग्य नहीं होता उसको खींचा नहीं जाता, वह सत्ता की देन है। मिथ्यात्व को ही तीन टुकड़े करने के उपरांत उसमें तीन भाग हो गए थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, तीन टुकड़े हो गए थे ना। ये दो टुकड़े बाहर से नहीं आए हैं, बाहर से तो एक ही टुकड़ा आया था, कौन सा? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का एक ही टुकड़ा आया था, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का टुकड़ा तो उसको तोड़ने पर बने हैं। मिथ्यात्व का खंड करने पर सम्यक प्रकृति बनती है, मिथ्यात्व का खंड करने पर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति बनती है। सत्ता में तीन थे, एक बाहर से आया हुआ है और दो भीतर ही टूट करके वहीं पड़े हुए हैं, ये बाहर से नहीं आते। तो सम्यक मिथ्यात्व के उदय में अशुभोपयोग है, ये बाहर से आए हुए कर्म के कारण से है कि भीतर से ही रहने वाले टुकड़े के कारण से है? भीतर से ही रहने वाले टुकड़े के कारण से है, लेकिन उसमें से एक टुकड़ा उठ गया ऊपर चौथे गुणस्थान में चला गया, उसका उदय वहां आएगा। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व नहीं, सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति चौथे गुणस्थान में उदय में आया और उसका उदय चौथे से लेकर सप्तम गुणस्थान तक होता है। शौषम सम्यक दृष्टि को, शौषम सम्यक दृष्टि को चतुर्थ गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान तक सम्यक मिथ्यात्व का उदय रहता है, सम्यक प्रकृति का, हाँ सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। शब्द ओझल हो जाते हैं उपयोग में से, कभी कभी निकल जाता है। उपयोग को एकाग्र करके बोलते समय में भी शब्द जो दृष्टि के सामने दिखते हैं ना, वो ना आते हुए दूसरा ही आ जाता है, ऐसा हो जाता है। यही उपयोग की विशेषता है। उपयोग का उपयोग बहुत सावधानी से करेंगे तो कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सावधानी से करेंगे तो कुछ नहीं होता, लेकिन होता क्या है, अगला विषय बताने के लिए दृष्टि उधर जाती है और शब्द कुछ और आ जाता है। ये स्वाभाविक है, छद्मस्त का उपयोग ऐसा ही रहता है, इसलिए इसको छद्मस्त कहा है। भगवान कहते हैं तुम्हारा उपयोग तो छद्मस्त का उपयोग है, सावधानी से रहो, जल्दबाजी करोगे तो जरा उपयोग में कुछ बाहरी शब्द और आ सकते हैं, जो आना नहीं चाहिए वो आ सकते हैं। तो देखो, पहले गुणस्थान से जीव जब चतुर्थ गुणस्थान में आता है तो उसका उपयोग का रंग बदलता है, पर योग का रंग नहीं बदलने वाला, क्योंकि चौथे गुणस्थान वर्ती भी वही पतंग लेके रखा है जो मन वचन और काय का है। जब वह घर जाएगा योग अशुभ होगा, जब मंदिर आएगा तो शुभ होगा। वही परिस्थिति है ना, जो अशुभोपयोगी को पहले गुणस्थान में परिस्थिति थी, वही योग की परिस्थिति, उनके जैसी परिस्थिति इनको भी है। तो योग और उपयोग में बहुत अंतर है। अब हम बात करते हैं मुनि महाराज की। ये तो चौथे गुणस्थानवर्ती एक श्रावक की बात हो गई, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की बात सुनो, वो अनुवृत्ति है, पर पूर्ण परिग्रह का त्यागी है क्या? नहीं, एक देश परिग्रह त्यागी है, सैमा सैमी है, विरता विरत गुणस्थान उसका है। तो पंचम गुणस्थान वर्ती जब अपने अनुवृतों को सावधानी के साथ पालन करने के समय में जो अपने योग को संभालता रहता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति किसी जीव हिंसा में ना हो, ऐसा योग को संभालता रहता है, इरिया समिति से चलता है, पानी को छानता है, जीवों की हिंसा से बच बच करके अपनी प्रवृत्ति करता रहता है मन वचन काय की, तो उस समय उसके योग की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? शुभ कहेंगे। उस समय शुभ होगा, वह भी मंदिर आता है, भगवान का नमस्कार स्तुति भक्ति आदि करता है, तो उस समय क्या होगा? शुभ होगा। परंतु वह भी दुकान में बैठ सकता है, दुकान कर सकता है, खेती कर सकता है, सातवीं प्रतिमा तक व्यक्ति खेती भी करता है, आरंभ त्याग प्रतिमा आठवीं है, वहां जाकर के पूर्णतः आरंभ त्यागी होता, स्थूल आरंभ त्यागी होता है, तो वहां तक इसकी पाप की क्रियाएं भी चलती रहती हैं। आठवीं प्रतिमा तक पाप की क्रियाएं भी होती रहती हैं और अनुवृतों का भी पालन करता रहता है। तो अनुवृतों को पालन करने में जो मन वचन काय की प्रवृत्ति सावधान होकर प्रवृत्ति करती रहती है, उस समय योग कैसा रहता है? शुभ रहता है। भगवान का दर्शन करते समय शुभ रहता है, प्रवचन सुनते समय शुभ रहता है, स्वाध्याय करते समय, अभिषेक पूजन करते समय, दान देते समय, दान देते समय, देते समय पूछ रहा हूं मैं, दे रहा है ये कौन सा योग? शुभ है, परंतु खाना पका रहा है ये अशुभ योग है। और खाना तो पकाना ही पड़ता है, क्या पकाना नहीं पड़ता? खाना पकाने से बचोगे, जिस दिन खाना पकाने से बचोगे ना उस दिन मुनि महाराज रहोगे। खाना तो पकाया जाता है, चाहे चौथे गुणस्थान वर्ती हो, चाहे प्रथम गुणस्थान वर्ती हो, चाहे पंचम गुणस्थान वर्ती हो, गृहस्थ तो है ही, तो गृहस्थ तो अपने लिए खाना पकाता ही है, अपने लिए खाना पकाता है। जब अपने लिए खाना पकाता है तो अपने लिए पकाए हुए भोजन में से कुछ भोजन अतिथि को निकाल करके उनके हाथों में डालना, ये अतिथि संविभाग है। अतिथि के लिए खाना पकाना अतिथि संविभाग नहीं, अपने लिए जो पका हुआ रहता है उसमें से जो कुछ भाग हम अतिथि के हाथ में डालते हैं उसका नाम अतिथि समिभाग। विभाग कब किया जाता है, पकाने पर या पकाने से पहले? हाँ, समिभाग का अर्थ होता है पकाए हुए पदार्थ में से उससे निकालना, अतिथि को इतना दूंगा मैं भी अपना इतना खाऊंगा, इसको समिभाग कहते हैं। और पकाने से, स्वयं को पकाने से पहले ही अगर ये विचार आ जाए कि अतिथि के लिए पकाऊंगा और उसमें से प्रसाद के रूप में मैं थोड़ा खाऊंगा और बाकी सब अतिथि को दूंगा, ये अतिथि समिभाग है क्या? नहीं है। अतिथि के उद्देश्य से अगर खाना पक गया तो उद्दिष्ट हो गया, और इस उद्दिष्ट दोष से श्रावक बच सकता है क्या? नहीं बच सक, बचना चाहे तो बच सकता है क्या? नहीं बच सकता है। फिर क्या करना पड़ेगा? स्वयं के लिए जितना हम रोज पकाते हैं उतना ही तो पकाना है, अतिथि के लिए कोई भी चीज पकाना नहीं है, उतना ही तो पकाना है जितना हम कल पकाए थे, आज पका रहे हैं इतना ही पकाना है। अतिथि गांव में हो या ना हो, अतिथि कौन? जो तिथि के बिना हमारे घर आते, बुलाने से नहीं आते, वो कहते हैं हम अतिथि हैं, तिथि के बिना आते हैं, जाओ तुम घर में बैठो, जिस तिथि को आएंगे पड़गा लेना, हमारी इच्छा से अपनी तिथि पर आएंगे हम, इसलिए तो अतिथि हैं। हम तिथि के बिना आते हैं इसलिए अतिथि हैं, और जो तिथि स्वीकार करके आता है वो उनका नाम अतिथि नहीं। आपको निमंत्रण दिया गया कि साहब कल के दिन आपका निमंत्रण हमारे लिए, हमारे घर पर आना, कल की तिथि को स्वीकार कर लेना, तो आप तो स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि अतिथि नहीं आप, इसलिए अतिथि आपको नहीं कहा है। अतिथि कौन होता है? जो समस्त प्रकार के आरंभ सारंभ आदि के कार्यों को त्याग दिया है उनको निमंत्रण नहीं चलता, किसी के निमंत्रण को हम स्वीकार करेंगे ना तो अनुमोदना होगी, वो खाना अपने लिए पकाएगा, फिर निमंत्रण देगा और जाकर के अपने निमित्त से सब खाना पकाएगा, आरंभ सारंभ आदि अपने निमित्त से वो करेगा, और उसको हम स्वीकार करेंगे उस निमंत्रण को, उस अनुमति के कारण से, अनुमति स्वीकार करने के कारण से, उनके निवेदन को स्वीकार करने के कारण से, वो जो कुछ भी हिंसा होगी अतिथि के निमित्त से हिंसा होगी, और उद्दिष्ट दोष, उद्दिष्ट भोजन रहेगा, वो उद्देश्य पूर्वक पकाया हुआ भोजन रहेगा, और उसको ग्रहण कर सकता है कौन? जगन्य सुपात्र ग्रहण कर सकता है। मध्यम सुपात्रों में, प्रतिमाधारियों में, ये नवीं प्रतिमा तक, नवीं प्रतिमा तक का श्रावक इस निमंत्रण को स्वीकार कर सकता है, क्योंकि नवी प्रतिमा तक का श्रावक हिंसा का त्यागी नहीं, आरंभ सारंभ का त्यागी नहीं, वह खुद पका भी सकता है और दे भी सकता है, और दूसरा कोई निमंत्रण दे कर चला जाता है तो उसको पूर्व से स्वीकार कर भी सकता है। नवी प्रतिमा तक, दसवीं प्रतिमा में वह निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगा तो वह अतिथि है। अतिथि कौन, कौन कौन सी प्रतिमा वाले अतिथि कहलाते हैं? दो दसवीं प्रतिमाधारी अतिथि हैं, तिथि के बिना वो चलते हैं, अर्थात निमंत्रण स्वीकार करना उनके लिए संभव नहीं है, चलता नहीं है। उद्दिष्ट त्यागी ग्यारहवीं प्रतिमाधारी वो भी अतिथि हैं, उनको भी चलता नहीं। आरी का वे भी अतिथि हैं, मुनि महाराज वे भी अतिथि हैं। नवी प्रतिमा से लेकर के पहली प्रतिमा तक के जितने भी श्रावक हैं वो अतिथि की कोटि में आते नहीं हैं, क्योंकि वो तिथि को स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए जो तिथि को स्वीकार करके भोजन कर सकते हैं वो अतिथि नहीं, क्योंकि उसमें हिंसा होती है स्वीकार करने में, क्योंकि उसमें उद्दिष्ट भोजन तैयार किया जाता है, उन्हीं के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। तो तिथि के साथ जाते हैं इसलिए अतिथि, निमंत्रण स्वीकार करेंगे तो तिथि को अपने स्वीकार कर लिया। जो तिथि को स्वीकार करके भोजन करते हैं वो अतिथि नहीं, और जो तिथि को स्वीकार किए बिना भोजन करते हैं वो अतिथि है। वो कौन कौन है? तो दसवीं प्रतिमाधारी, ग्यारहवीं प्रतिमाधारी, आरिका और मुनि, इतने हमारे अतिथि कहलाते हैं। देखो ज्ञान हो रहा है, भोजन पकाते समय किन भावनाओं से पकाना चाहिए यह स्पष्ट ज्ञान मिल रहा है, मिल गया ना? दसवीं प्रतिमाधारी को भोजन पका रहे हैं, क्या तू उनके उद्देश्य से पका सकते
नहीं?
ग्यारहवीं प्रतिमाधारी को भोजन पका रहे हैं तो क्या उनका उद्देश्य बना करके पका सकते नहीं? तो किसके उद्देश्य से पकाओगे? खुद के उद्देश्य से। कितना पकाओगे? जो स्वयं के लिए चाहिए पड़ता उतना ही, या उनका भी थोड़ा हिस्सा डालकर उनके नाम से एक मुट्ठी चावल अधिक, उनके नाम से थोड़ा सा आटा अधिक, उनके नाम से थोड़ी सी सब्जी अधिक, उनके नाम से थोड़ा सा फल अधिक, चलेगा? नहीं चलेगा। ये तो भाव दोष है, अज्ञान दोष है, ये हमारे लिए अभी तक पता नहीं था इसलिए करते थे ऐसे। उद्दिष्ट उद्दिष्ट सुने थे तो शब्द, लेकिन प्रैक्टिकली हमने न किसी से इतना विशद रूप से सुना था न ज्ञान था, पर जब कभी भी चौका लगाने का नंबर आया तो मुनि महाराज ध्यान में आ गए, कल आने वाले हैं और उनके लिए पकाओ। ऐसा होता था क्या? नहीं, सही बताओ, होता था क्या? नहीं होता था। ऐसा उद्दिष्ट भोजन खिलाया क्या? नहीं खिलाया। तो इसी को भगवान कहते हैं ये दोषपूर्ण आहार है, इस प्रकार के दोषपूर्ण विधि के बिना, ये विधि लोप हो गई, भक्ति लोप नहीं हुई, नवधा भक्ति तो आपने कर लिया, विधि लोप हो गई। विधि क्या? तो ये विधि है, उद्दिष्ट नहीं करना ये विधि है, उनके लिए ज्यादा पदार्थ नहीं डालना ये विधि है, या उनके लिए ही सब कुछ पकाना नहीं ये भी विधि है, अंश रूप से भी नहीं पकाना और पूरा भी नहीं पकाना उनके निमित्त से, ये विधि कहलाती है। विधि का ज्ञान नहीं रहेगा और केवल भक्ति के माध्यम से नवधा भक्ति करते हुए आहार दान देंगे तो वो भक्ति भी समीचीन भक्ति नहीं कहलाती, अंध भक्ति है। समीचीन विधि के आधार से जो भक्ति की जाती है वो भक्ति सम्यक भक्ति है, यथार्थ भक्ति है। विधि के ज्ञान के बिना जो भक्ति की जाती है वो भक्ति अंधश्रद्धा की भक्ति है। कारण क्या है? कारण ये है हमको विधि पता नहीं, और जिस विधि से आहार पकाना था वो विधि लोप हो गई है, हमने उल्टा सीधा पका, उद्देश्य पूर्वक पका के रखा है, और फिर शुद्धि बोलते समय ये बोल रहे हैं आहार शुद्ध है। अरे उनके लिए पकाए हैं और आहार शुद्ध कैसे है? विधि जब गायब हो गई है तो फिर वो आहार शुद्ध कैसे है? इसलिए कि मर्यादा के साथ आटा उपयोग किया, इसलिए कि छान के पानी लाया है, जीवन छोड़कर के लाया है, इसलिए शुद्ध है। उद्देश्य भी अगर मुनि का अतिथि का हो गया है तो विधि लुप्त है। तो पकाते समय कैसे भाव करे, कैसे भाव रखे और कितना पकाए, क्या पकाए, कैसे पकाए, पानी छान करके लाना यह भी विधि है, जीवाणुओं की रक्षा करना यह भी विधि है, उद्देश्य पूर्वक नहीं पकाना यह भी विधि है। ये सभी विधि निर्दोष होने के उपरांत आप जो शुद्धि बोलते हैं वो ज्ञान पूर्वक शुद्धि है, ज्ञान पूर्वक नवधा भक्ति है। वो नवधा भक्ति ज्ञान पूर्वक होने के लिए विधि का ज्ञान चाहिए। पहले विधि संबंधित ज्ञान हो तो भक्ति भी निर्मल है, निर्दोष है, और विधि संबंधी ज्ञान नहीं है तो भक्ति भी मलिन है। विधि बिगड़ गई है और आहार बना के रखा और शुद्धि बोल दिया, नवधा भक्ति पूरी कर ली, तो झूठ बोला ना, आहार शुद्ध है बोला कि नहीं बोला? अतिथि को पका के रखा और आहार शुद्ध है बोला, तो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? तो झूठ बोल रहे हैं तो वचन शुद्धि कहां है? और फिर काया भी प्रवृत्त है झूठ में, हाथ भी जोड़ रहा है, काया इस ऐसी हो रही है, तो काया भी झूठ है क्या? नहीं, काया भी अशुद्ध है। ये हाथ जो जुड़ रहा है ये काया अशुद्ध है, केवल स्नान करने से शुद्ध नहीं होता, स्नान करना तो विधि है भक्ति नहीं, हाथ जोड़ना भक्ति है पर स्नान करना ये विधि है। देखो बारीक है, डीप जाकर के पकड़ना विषय को, स्नान करना ये विधि है और हाथ जोड़ना ये भक्ति है, वस्त्र पहनना विधि है सोने का, और फिर वस्त्र जोड़ने के बाद काय शुद्धि है, यानी मतलब वस्त्र भी शुद्ध है उसके साथ और शरीर भी शुद्ध है, ये कहना ये भक्ति है। मन शुद्ध है, मन में किसी भी प्रकार का झूठ नहीं है, असत्य नहीं है, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं मेरे लिए ही आहार पकाया हूं, ये मन शुद्धि है, आपके लिए नहीं पकाया, मेरे लिए पकाए, ये मन शुद्धि है। मैं सत्य बोल रहा हूं, आपके लिए पकाया था ये भी तो सत्य है महाराज, आप आहार करो, लौट के मत जाना, घर में आए हैं तो लौटना अच्छा नहीं। मैं सत्य बोल रहा हूं ना, मन में सत्य है, काया से सत्य है, वचन भी सत्य है, आपके लिए ही पकाया हूं सत्य बोल रहा हूं, झूठ क्यों बोलूं? आपके लिए पकाया है और नहीं पकाया बोलना झूठ है। तो यहां कहां गड़बड़ी हो रही है? विधि में गड़बड़ी हो रही है, विधि का ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा है। किसके लिए पकाया जाता है यही पता नहीं है, और वो कह रहा है कि महाराज आपके लिए पकाया है, ये सत्य बात है, इसलिए सत्य ही बोल रहा हूं। तो ये सत्य है क्या? ये असत्य ही है, सत्य भी बोल रहा है तो असत्य है, क्योंकि विधि बिगड़ चुकी है। विधि बिगड़ने से भक्ति बिगड़ गई, भक्ति बिगड़ने से सब बिगड़ गया, और सब ही बिगड़ा है। तो दान देते समय पुण्याश्रव कैसे होगा? पापाश्रव होगा, देते समय पापाश्रव भी कर सकते हैं, पुण्याश्रव भी कर सकते हैं। विधि का संरक्षण और भक्ति का संरक्षण, इन दोनों का संरक्षण हो तो पुण्याश्रव है, आत्मकल्याण है, कर्म निर्जरा है, सब कुछ है। ये सब कुछ तो किया, लेकिन अगर भीतर का उपयोग ठीक नहीं है तो हमने योग को तो संभाल लिया, हमने अतिथि को आहार नहीं पकाया बल्कि स्वयं के लिए ही पकाया है, ये विधि में तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और विधि में गड़बड़ी नहीं है तो नवधा भक्ति में भी गड़बड़ी नहीं रहेगी। आप बराबर बोलेंगे, मैंने मेरे लिए ही पकाया है, बिल्कुल ठीक है, ये सत्य है, इससे पुण्याश्रय होगा। उनके लिए नहीं पकाया है तो दोषों को टाल कर किया है, इससे पुण्याश्रय, मैंने लिए ही पकाया था और मैं दान दे रहा हूं। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति दान देने में जो प्रवृत्त हो रहा है वो विधि के शुद्ध होने से ही भक्ति शुद्ध है, और भक्ति शुद्ध होने से मन वचन काय शुद्ध है, ये जो बोलना है वो भी सत्य है। सत्य मन वचन काय की प्रवृत्ति विधि की सत्यता के आधार से पुण्याश्रव करता है, पुण्याश्रव करता है, और विधि बिगड़ गई है तो पापाश्रव करता है। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि मुनि के लिए मत पकाओ, पका करके देओगे तो पापाश्रव होगा, क्योंकि विधि बिगड़ जाएगी। क्या विधि बिगड़ने से पाप नहीं लगता? क्या केवल भक्ति बिगड़ने से ही पाप लगता है? भक्ति करना तो फेमस है, सभी लोग करते हैं, भक्ति में कोई कमी नहीं रखते, पर विधि का ज्ञान सबको नहीं है, 60% लोगों को विधि का ज्ञान नहीं होता है। और इसलिए मुनि के लिए भी दोष लगता है, मुनि का व्रत भी भंग होता है, और स्वयं की जो दान की क्रिया विधि लोप होने से जो क्रिया समीचीन होनी चाहिए थी वो समीचीन न होकर के वो भी बिगड़ जाती है, और देते समय जहां पुण्य लगना था वहां पर पुण्य नहीं लग पाता। तो दोषपूर्ण आहार देना पापाश्रव का कारण, दान देते हुए भी पापाश्रव होता है। और दान देते हुए पुण्याश्रव भी हो सकता है, जब विधि ठीक रहेगी तो योग ठीक रहेगा, और योग के माध्यम से जो हम नवधा भक्ति करेंगे, मन से वचन से काय से नव भक्तियां करते हैं, पड़गाना, नमस्कार करना, पाद प्रक्षालन करना, अर्चन करना, गंधोदक लेना, फिर इतना सब होने के बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, ऐसा जो बोलते हैं वो विधि अगर ठीक थी तो ये बोलना सार्थक। अगर विधि बिगड़ गई थी तो ये बोलना सब व्यर्थ, डुप्लीकेट। और इसको बोलो तो भी पापाश्रय होना है, नहीं बोलो तो भी पापाश्रय होना है, क्योंकि विधि समाप्त हो गई है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझने की चीज इसमें क्या थी, विधि या भक्ति? विधि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, विधि भक्ति को संभाल लेता है, भक्ति को पवित्र करता है, और विधि लोप हो गई तो भक्ति भी अपवित्र हो जाती है, व्यर्थ ठहर जाती है। भक्ति तो आवश्यक है ही, क्योंकि अतिथि गुणवान है, उन गुणों का आदर होता है भक्ति करने से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों गुण हैं। भक्ति क्यों करनी पड़ती है? उन गुणों का आदर हो इसलिए, अन्यथा भक्ति की क्या जरूरत है? विधि सब कुछ ठीक है तो आहार देने से पाप लगने वाला नहीं है। पर श्रावक कहता है नहीं, हमारा आहार तो शुद्ध है, उद्देश्य पूर्वक नहीं बनाया, उद्देश्य रहित आहार है, शुद्ध है, जीवाणुओं की रक्षा करके ही बनाया है, छान के पानी लाया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हम भक्ति पूर्वक ही आहार देंगे। भक्ति नहीं रहेगी तो मेरे आत्मा के कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, मेरे में नम्रता नहीं आएगी। उन महान गुणों के प्रति विनम्र होना पड़ेगा ना, भक्ति दर्शानी पड़ेगी ना। मैं उन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए नम्र हो रहा हूं, नम्र हो रहा हूं इसका मतलब मैं कषाय नष्ट कर रहा हूं। कषाय नष्ट कर रहा हूं का मतलब अपना आत्मा का कल्याण कर रहा हूं। अपनी आत्मा का कल्याण कर रहा हूं का मतलब मैंने अपनी आत्मा को पवित्र कर रहा हूं, कर्म पाप कर्म के मैल से धो रहा हूं। जब श्रावक भक्ति करता है असंख्यात गुणित घाती कर्मों की निर्जरा होती है दान देते समय, भक्ति करते समय। जब वो खुद के लिए आहार पकाता रहता है उस समय में भी, क्योंकि विधि ठीक है, परंतु पकाते समय अतिथि ही मन में झूल रहे हो, महाराज के लिए ये बनाना है, महाराज के लिए ये बनाना है, महाराज के लिए ये बनाना है, तो उस समय वह पापाश्रव करता रहता है, क्योंकि विधि को समाप्त कर रहा है अज्ञान के कारण से, आगम का ज्ञान नहीं है। तो मूलाचार में जो ये 16 प्रकार की दोष बताए हैं वो सभी विधि को दर्शाने वाले दोष हैं। विधि में क्या क्या कमी न रहे वो दर्शाते हैं। तो 16 दोषों को टालकर जब आहार निर्माण करता है श्रावक, उस समय विधि पवित्र रहती है। 16 दोषों को टालना, एक बार उसका चिंतन मनन कर लो, उन 16 दोषों को लिख के रखो और एक बार उसको चिंतन मनन कर लो और ध्यान में रखो, तो 16 दोष कभी होंगे नहीं, और 16 दोष नहीं होंगे तो विधि तो ठीक रहेगी ही, और विधि ठीक रहेगी तो आप भक्ति करेंगे तो वो भी भक्ति भी ओरिजिनल रहेगी, और भक्ति ओरिजिनल है, विधि ओरिजिनल है, सब कुछ ठीक है, तो आत्मा के पाप मैल तो असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा के रूप में धुलेंगे। श्रावक दान देते समय जिस कर्म की निर्जरा करता है वह कर्म की निर्जरा सामायिक करते समय भी नहीं होता है उसका, क्योंकि यह साक्षात प्रैक्टिकल है कि रत्नत्रय स्वरूप धर्म को वो जीवित रख रहा है। मुनि को आहार देने का मतलब क्या है? रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग को, उस धर्म के तीर्थ को जीवित रखने का काम चल रहा है या ऐसे ही देने का काम चल रहा है? किस उद्देश्य से दान दे रहा है वो? इसलिए कि धरती पर रत्नत्रयधारी मुनि जीवित रहे हमेशा, दीपक जला रहा है वो, हर रोज दीपक चलाता है, हर रोज उसमें घी डालता है, बुझे ना ये। इस तरह से रत्नत्रय धर्म, रत्नत्रय रूपी धर्म को सुरक्षित रखने का दायित्व श्रावक का होता है, और मुनि का दायित्व होता है कि ये भक्तियां क्या होती हैं, ये विधि क्या होती है इसको समझाओ, इनका स्वरूप एक बार समझाओ, ताकि वह समीचीन प्रवृत्ति करे और इस दीपक को युगों युगों तक जलाता रह सके। मुनियों का यह कर्तव्य है कि श्रावकों को सम्यक ज्ञान दे, हर प्रकार का जो ज्ञान होगा वो समीचीन होगा, ऐसा ज्ञान दे, उल्टा सीधा ज्ञान ना दे, और जरा भी उल्टा सीधा हो गया तो मार्ग भटक सकता है, श्रावक अपने मार्ग से भटक सकते हैं, और उल्टा दे दिया तो हम तो पहले से ही भटके रहते हैं। इसलिए आगम विहित जो ज्ञान है, श्रुत है, उसका चिंतन मनन करके उसमें से सार गर्भित समीचीनता को बाहर निकालकर फिर श्रावक को दें, उससे उनका भी कल्याण होगा और खुद का भी कल्याण होगा और मोक्ष मार्ग जीवित रहेगा। पंचम काल में मुनि धर्म कब तक टिकने वाला है? अभी कितने समय तक टिकने वाला है? कितने वर्ष तक? पंचम काल कितने साल बचा है अभी? मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। हम तो सोते रहते हैं, स्वाध्याय नहीं करते। कितने वर्ष का बचा हुआ है पंचम काल? 18,500 वर्ष पंचम काल अभी बचा हुआ है। जिनेंद्र भगवान की वाणी है, पंचम काल में भी मुनि महाराज, रत्नत्रय को धारण करने वाले भावलिंगी मुनि महाराज 18,500 वर्ष तक जीवित रहने वाले, ये भगवान के वचन अन्यथा हो सकते हैं क्या? नहीं, रहेंगे मुनि महाराज ऐसे रत्नत्रय को धारण करने वाले विवेकी ज्ञानी संयमी मुनि महाराज रहेंगे। और वो मुनि महाराज रहेंगे ऐसा जो कहा है, वो किसके वजह से रहेंगे? वो श्रावक के वजह से रहेंगे। श्रावक उस दीपक को बुझने नहीं देंगे और टिकाए रखेंगे, यानी विधि को समझे रहेंगे। वो खुद के लिए खाना पकाते रहेंगे और खुद का भोजन देते रहेंगे, इसलिए मुनि बचेंगे। थोड़ा ऐसा ही तो ज्ञान प्राप्त करना है कि हम खाना पका रहे हैं तो किसके लिए पकाएं और कैसे पकाएं और कौन सा खाना अतिथि को दें, इतना ज्ञान रखना है, ज्यादा तो है ही नहीं। टाइम नहीं, हो गया खत्म। ज्ञानोपयोग, मैं इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा कल। उपयोग, कल कौन सा वार? शुक्रवार, कल शुक्रवार। उपयोग और योग, ये दो बातें समझ में आ गई। पतंग का उदाहरण दिया, डोरी का उदाहरण दिया, डोरी का रंग बदलता है ये भी कहा। पतंग वो धरती पर रहता है तो अशुभ, आकाश में उड़ने लगता है तो शुभ, यानी धार्मिक कार्य अनुष्ठान में जब रहता है तब शुभ, वो आकाश आकाश है वो, और जब वो सांसारिक कार्य करता है तो वो धरती है, सांसारिक कार्य धरती के समान है, उसमें जब योग आता है तो अशुभ। योग बदल सकता है, उपयोग निरंतर रहता है। उपयोग का बार बार बदलना संभव नहीं है, उपयोग निरंतर रहता है। अनादिकाल से हमारा उपयोग अशुभोपयोग रहा है, किस कारण से? कर्मों के कारण से। कितने कर्म? 3 कर्म, अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। इनके प्रभाव को स्वीकार करता हुआ, इन्हीं के उदय के अंडर में आत्मा कब तक रहा है? अनादिकाल से रहा है। तो अनादिकाल से उपयोग बदला था क्या? नहीं बदला था। परंतु योग कितनी बार बदला होगा? बहुभव में शुभ कार्य भी किए होंगे और अशुभ कार्य भी किए होंगे, ये योग के द्वारा किए होंगे। योग बार बार बदला है, परंतु उपयोग को बदलने के लिए देवशास्त्र गुरु तत्वार्थ का ज्ञान, ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तत्व का ज्ञान होने पर उपयोग बदलता है, उपयोग का रंग बदलता है। जब जीव अनंतानुबंधी कषाय छोड़ देता है, जब जीव मिथ्यात्व को त्याग कर देता है, अनायतन को भजना बंद कर देता है, रागी को भजना बंद कर देता है, वस्त्रधारी जीवों को भजना बंद कर देता है। अनायतन क्या है? वस्त्रधारी है ना, परिग्रहधारी, अस्त्र शस्त्र वस्त्र कोई भी हो, वस्त्र केवल हो तो भी भजने योग्य नहीं है। 6 अनायतन है, आयतन है, 6 आयतन है और 6 अनायतन है। आयतन 6 है, कौन कौन? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, ये दिगंबर ही तो हैं। वस्त्र निर्वस्त्र है, परिग्रह रहित है, केवल निर्वस्त्र नहीं, संपूर्ण परिग्रह रहित है। इसलिए ये पूजनीय आराधनीय आयतन है और शेष आयतन 3 है, इनको मानने वाले भक्त। तो यदि भक्त वे परिग्रहधारी हैं, वो भक्त इन 3 के परिग्रहधारी हैं, तो भजनीय आयतन नहीं है, आदरणीय आयतन है, वो तीन सम्यक दृष्टि श्रावक और श्राविका, पंचम गुणस्थानवर्ती सम्यक तो सहित और चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक तो सहित, ये दोनों श्रावक श्राविका आदरणीय आयतन है। क्या पूजनी? क्योंकि पंचम गुणस्थान में सयमा संयम जरूर है, पर वो सयमा संयम से घाती कर्मों का नाश नहीं होता, जन्म मरण का नाश नहीं होता, अनर्घ्य पद की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष पद की, केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, उस पद से वीतरागता की उपलब्धि नहीं होती, शुभ लेशा की उपलब्धि होती है, शुभ भाव की उपलब्धि होती है। वीतरागता का तात्पर्य दस परिग्रह के त्याग से जो आत्मा के भाव बनते हैं वो तो शुभ बनते, त्याग करना तो शुभ है, और इस शुभ के आने पर उस शुभ में भी जो अनुराग रहता है उस अनुराग को भी त्याग करके जो निर्विकल्प अवस्था में, परिग्रह का विकल्प छोड़कर निर्विकल्प अवस्था में जाते हैं, और व्रतों का भी विकल्प छोड़ करके, ये प्रशस्त राग है ना व्रतों का विकल्प, मैं जीवों की रक्षा करूं, मैं सत्य बोलूं, समिति से बोलूं, ये प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति रूप विकल्प है, ये इस विकल्प से भी परे होकर जब आत्मा में जाते हैं मुनि महाराज, उस समय वीतरागता आती है। वीतरागता का लाभ शुद्ध उपयोग के साथ है, परिग्रह के साथ भी नहीं और शुभोपयोग के साथ भी नहीं। शुभोपयोग किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक होता है? शुभोपयोग, उपयोग, उपयोग, योग नहीं, उपयोग, शुभ रूप उपयोग किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक रहता है? चौथे से सातवें गुणस्थान तक, जहां तक प्रवृत्ति है वहां तक। तो चौथे में तो कैसी प्रवृत्ति है? उपयोग की प्रवृत्ति चौथे में शुभ रूप ही है, उपयोग तो शुभ ही रहेगा, योग बदल सकता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति विषयों में हो गई तो अशुभ, मंदिर में आ गए तो शुभ, योग बदलता रहता है। पर उपयोग, उपयोग का रंग अगर अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान का अगर निकल गया है तो शुभ है, तो शुभ है तो चौथा गुणस्थान है, या ऊपर के सातवें तक कोई भी एक गुणस्थान है। तो उपयोग अगर चौथे में है तो ये भी क्या बदल जाएगा योग के साथ? संसार में गए तो सम्यक दर्शन छूट गया, ऐसा होता है? संसार में गए तो अनंत अनुबंधी का उदय आ गया, और मंदिर में आ गए तो अनंत अनुबंधी का उपशमन हुआ, ऐसा बार बार होगा क्या ये? तो उपयोग की परिणति कर्माधीन है, कर्म के उदय के अधीनता में है, शुभ होना या अशुभ होना ये कर्म सापेक्ष है। पर योग की परिणति मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप है, मन से हम विषय कषाय में निकल गए तो अशुभ हो गया, पापाश्रव हो गया, योग आश्रव का कारण। मन वचन काय की प्रवृत्ति विषयों में गया, पापाश्रव हो गया, मंदिर में आए पाप का कार्य नहीं कर रहा है, पुण्य का कार्य हो रहा है, तो पुण्य के कार्य से शुभाश्रव हुआ, पुण्याश्रव हुआ। तो योग दो प्रकार का, शुभ योग अशुभ योग, शुद्ध योग नहीं है, पर उपयोग तीन प्रकार का है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग। योग तीन प्रकार का नहीं है, शुद्ध योग में जा सकते हैं? योग शुद्ध होता ही नहीं है, उपयोग शुद्ध होता है। ये उपयोग की परिणति जब मिथ्यात्व के उदय में रहेगी तो अशुभ, जब मिथ्यात्व का नष्ट करके चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व के सहित रहेगी और रहेगा उपयोग तो उस समय शुभ, और पंचम गुणस्थान में जाएगी, जाएगा ये उपयोग तो वहां पर बाह्य परिग्रह भी है, तो बाह्य परिग्रह होने के कारण से योग तो शुभ भी होगा अशुभ भी होगा, परंतु उपयोग जब तक पंचम गुण स्थान में जीव है निरंतर उसकी धारा शुभ ही रहेगा। अब छठे में गया, छठे गुण स्थान में भी शुभ योग है, शुभोपयोग है। सप्तम में गया, सप्तम में भी शुभोपयोग है। ये शुभोपयोग क्यों है? क्योंकि सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है, और भाव चारित्र द्रव्य चारित्र दोनों हैं। द्रव्य चारित्र के होने से अशुभ योग नहीं होगा, द्रव्य चारित्र होने से अशुभ योग नहीं होगा, परंतु उस द्रव्य चारित्र के साथ भाव चारित्र होने से उसके सर्वघाती कषाय तीन नहीं है और मिथ्यात्व नहीं है। अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व नहीं है, छठे गुण स्थान में अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्याख्यानावरणी नहीं है और प्रत्याख्यानावरणी नहीं है। ये चारित्र के सर्वघाती कर्म है, इनके न होने से वहां पर उपयोग शुभ है। इन सर्वघाती प्रकृतियों के न होने से उपयोग शुभ है। पंचम गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरणी और अनंतानुबंधी इन दो के न होने से उपयोग शुभ है। चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी के न होने से उपयोग शुभ है, परंतु तीसरे गुण स्थान में सम्यक्त्व का घातक सम्यक प्रकृति का उदय रहने से उपयोग अशुभ है, और दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कर्म का उदय होने से उपयोग अशुभ है। पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व सबका उदय होने से उपयोग अशुभ है। तो उपयोग का जब भी कथन करेंगे, चर्चा करेंगे, कर्म सापेक्ष करेंगे, गुणस्थान सापेक्ष करेंगे, परंतु योग की चर्चा जब करेंगे तो उसमें लेशा को भी ले लो, लेशा के आधार से कर लो। जब कषाय मंद होती है तो शुभ लेशा होती है, तो अनंतानुबंधी कषाय मंद हो गई, लेशा शुभ हो जाती है, पर अनंतानुबंधी का मंदोदय में अनंतानुबंधी का अभाव तो नहीं होता है ना। अभाव नहीं है इसलिए उपयोग अशुभ है, परंतु वो वही कषाय मंद हो गई है इसलिए शुभ लेशा है, और उस शुभ लेशा के साथ यदि हम विषय कषायों में हैं तो योग अशुभ है। उसी शुभ लेशा के साथ यदि मंदिर में हैं, धर्मानुष्ठान काम कर रहे हैं तो शुभ योग है, शुभ लेशा भी है और शुभ योग भी है। यदि अशुभ लेशा है, अनंतानुबंधी का तीव्रोदय है और यह इस तीव्रोदय के साथ हम विषय कषायों में हैं तो अशुभ योग है, पापाश्रव है, अशुभ योग है, पापाश्रव है। और यदि मंदिर में है और अनंतानुबंधी का तीव्रोदय है तो अशुभ लेशा है, अशुभ लेशा है, परंतु पूजा भी कर रहे हैं। तीव्र कषाय के साथ भी तो पूजा की जा सकती है, झगड़ा हो गया पूजा करते समय तो अनंतानुबंधी कषाय बढ़ गई उसकी, और अनंतानुबंधी कषाय बढ़ गई तो यहां पर झगड़ा जब करेगा तब अशुभ योग है, और झगड़ा छोड़कर शांत होगा, शांत होगा, लेकिन भीतर भीतर अनंतानुबंधी तीव्र है तो अशुभ लेशा है, परंतु पूजन तो कर रहा है, अनुष्ठान तो चल रहा है, तो योग शुभ है, योग शुभ है। ये इतनी डिटेल चर्चा, बहुत डीप चर्चा योग और उपयोग के संबंध में समझ में आई है, फिर भी इसमें जो बचा कुचा विषय है उसको कल देखेंगे।